ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 25 अगस्त 2019 के लिए है। विषय मन, स्वर्णपथ, तिमोथियस। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर समर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। उत्तरदायी अध्ययन यशाया। सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वो तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तो तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इसराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, और इस कारण मैं तेरी शांति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में तेरे राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सर्जा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन सहनता। धार्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरण आगत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। यर्मिया। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। क्रंथियों। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आगे हो और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता रहा और सारे सूर्या में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को जो अनेक प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए, और उसने उन्हें ठीक किया। लूका। फिर वो ग्रासिनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, और बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और ना ही घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वो उस मनुष्य में से अशुद्ध आत्मा को निकल जाने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वो उस पर बार बार प्रॉब्लम होती थी, और यदि आप ही लोग उसे संगलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वो बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत सी आत्माएं उसमें प्रवेश कर गई थीं, और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह घड़े में जाने की आज्ञा न दे। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा है, सो उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें प्रवेश करने दे, सो उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं मनुष्य में से निकलकर सुअरों में गई, और वो झुंड कड़ाके पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब गया, और लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थीं उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और साचित बैठे हुए पाकर डर गए। मत्ती। जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर उससे कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है, और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वो उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हटेले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे झिड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घाटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाए तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। जब वो गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। यूहन्ना। तब यीशु ने उन यहूदियों को जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। करंथियों। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। रोमियो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सिद्धर्श न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भलाई और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्रंथियों। सो यदि कोई परमेश्वर में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो नई हो गई हैं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मन अपने सभी स्वरूप पर सर्विच और उन सभी पर शासन करने वाला, विचारों की अपनी प्रणाली, अपने सभी विशाल निर्माण का जीवन और प्रकाश का केंद्र सूर्य है, और मनुष्य दिव्य मन के लिए सहायक है। सवाल, आदमी क्या है? पवित्र शास्त्र हमें सूचित करता है कि मनुष्य परमेश्वर की छवि और समानता में बना है। वो ईश्वर का यावजिक विचार है जिसमें सभी विचार शामिल हैं। वो भगवान की छवि और समानता को दर्शाता है कि सभी के लिए सामान्य शब्द विज्ञान में पाई जाने वाली साचित पहचान, जिसमें मनुष्य ईश्वर या मन का प्रतिबिंब है और इसलिए शाश्वत है, जो परमात्मा से अलग नहीं है, जिसे देवता से एक भी गुण नहीं मिला है, जो अपने आप में कोई जीवन बुद्धिमता और ना ही रचनात्मक शक्ति रखता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से वो सब कुछ दर्शाता है जो उसके निर्माता का है। विज्ञान घोषित करता है कि विज्ञान मन के अधीन है। चेतना साथ ही साथ क्रिया मन द्वारा शासित होते हैं, ईश्वर में है, जो कि सभी विज्ञानों के मूल और राज्यपाल से पता चलता है। भावतिक ज्ञान में अपना क्षेत्र असत्य में विज्ञान से अलग है। आत्मा ईश्वर से सामान जैसा पूर्ण कार्रवाई में बेताली का कोई सिद्धांत नहीं है। इसकी कार्रवाई त्रुटिपूर्ण है और मनुष्य को सामग्री में होने का संकेत देती है। अंतःकरण बुद्धि या आत्मा के प्रभाव के साथ साथ इस कारण को भी महत्वपूर्ण बना देगा, यानी इस प्रकार मन को ईश्वर से अलग करने का प्रयास। तथाकथित नश्वर मन की क्रिया को होने के सिद्ध भाव को बाहर लाने के लिए दिव्य मन द्वारा नष्ट किया जाना चाहिए। यीशु ने कभी भी बीमारी को खतरनाक या ठीक ना होने वाली नहीं कहा, जबकि उनके छात्र उनके पास एक ऐसा मामला लेकर आए जिसे वो ठीक करने में असफल रहे थे। तो उसने उनसे कहा, हे विश्वासहीन पीढ़ी, ये कहते हुए कि ठीक करने की अपेक्षा शक्ति मन में होती है, उसने कोई दावा निर्धारित नहीं किया, भावतिक कानूनों के लिए कोई आज्ञाकारिता का आग्रह नहीं किया, लेकिन उनके लिए प्रति अक्ष अवज्ञा का कार्य किया। ये दर्ज है कि एक बार यीशु ने एक बीमारी का नाम पूछा था, एक बीमारी जिसे आधुनिक लोग मानुप्रभ्रंश कहते हैं। दानव या दुष्ट ने जवाब दिया कि उनका नाम भीड़ था। उसके बाद यीशु ने अशुद्ध आत्माओं को निकाल दिया और पागल आदमी को बदलकर ठीक कर दिया। अंजील ये बताते हुए दिखाई देती है कि यीशु खुद अशुद्धता को प्रकट होने और नष्ट करने का कारण बना। पागलपन का उपचार विशेष रूप से दिलचस्प है, हालांकि मामला बड़ा है। ये सच्चाई के शुद्ध कार्य के लिए अधिकांश रोगों की तुलना में अधिक आसानी से उपज देता है, जो त्रुटि का प्रतिकार करता है। पागलपन का इलाज करने में दी जाने वाली दलीलें अन्य बीमारियों की तरह ही है, अर्थात वो असंभावना जो मस्तिष्क को नियंत्रित या विचलित कर सकती है या पीड़ित कर सकती है। ये भी तथ्य कि सत्य और प्रेम, स्वस्थ राज्य, मार्गदर्शित और शासित नश्वर मन या रोगी के विचार को शापित करेंगे और सभी त्रुटि को नष्ट कर देंगे, चाहे इसे मानुभ्रंश, घरना या कोई अन्य कला कहा जाए। मन भव्य रचनाकार है और इसके अलावा कोई शक्ति नहीं हो सकती जो कि मन से ली गई है। चिकित्साहीन और अस्वाभाविक तरीके मन और दवाइयों को ठोस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दोनों वैज्ञानिक रूप से घुलमिल नहीं पाएंगे। हम उनसे ऐसा करने की इच्छा क्यों करें जबकि इससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यदि मन सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है तो हमें मन पर भरोसा करने की आवश्यकता है, जिसे निम्न शक्तियों के सहायोग की आवश्यकता नहीं है। शुद्धिकरण और मादक पदार्थों के उपयोग से हम जिस अशुद्ध आत्मा को पागलपन को ठीक कर सकते हैं, वो पागलपन की अपने आप में हल्की सी एक प्रजाति है। क्या दवाइयां मस्तिष्क में अपने स्वयं के समझौते पर जा सकती हैं और अव्यवस्थाकारियों को तथाकथित सूजन को नष्ट कर सकती हैं, इस प्रकार पदार्थ के माध्यम से नश्वर मन में पहुंच सकते हैं? दवाइयां एक लाश को प्रभावित नहीं कराती और सत्य रक्त के माध्यम से दावों का वितारित नहीं करता है, और उनमें से बुद्धि और भावना को एक माना जाता है। टखने के संयुक्त का अव्यवस्था अवधारात्मिक रूप से पागलपन का उत्पादन करेगा। क्या ऐसा नहीं था कि नश्वर मन सोचता कि मस्तिष्क के मुकाबले में टखने का संयुक्त कम अंतर से जुड़ा हुआ है? इस विश्वास को उलट करें तो परिणाम प्रति अक्ष रूप से भिन्न होंगे। विज्ञान केवल सभी बीमारियों की उत्पत्ति को मानसिक रूप से प्राकृत करता है, बल्कि ये भी घोषणा करता है कि सभी रोग दिव्य मन से ठीक हो जाते हैं। इस मन को छोड़ कोई भी उपचार नहीं हो सकता, हालांकि हम एक दावे या किसी अन्य साधन पर भरोसा कर सकते हैं जिसके लिए मानव विश्वास या प्रयास का निर्दर्शन किया जाता है। ये नश्वर मन है, कोई फर्क नहीं पड़ता जो बीमार को लाता है। जो कुछ भी अच्छा लगता है वो भावतिकता से प्राप्त कर सकता है, लेकिन दिव्य शक्ति के माध्यम से बीमारों को वास्तव में ठीक नहीं किया जाता है। केवल सत्य, प्रेम और जीवन की क्रिया सिद्ध भाव दे सकता है। दौड़ को बढ़ाने के लिए आवश्यकता इस तथ्य का पिता है कि मन ये कर सकता है, क्योंकि मन अशुद्धता की बजाय पवित्रता, कमजोरी की बजाय ताकत और बीमारी की बजाय स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। सत्य संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तनकारी है और इसके हर तिनके को पूरा कर सकती है। सत्य एक नया पुरानी बनाता है जिसमें पुरानी चीजें जाती रहती हैं और सभी चीज़ें नई हो जाती हैं। जुनून, स्वार्थ, झूठी भूख, घृणा, भय, सभी का मुक्ता, आध्यात्मिकता के लिए उपज और होने का अतिरेक ईश्वर अर्थात अच्छाई की तरफ है। क्रिश्चियन साइंस के तत्वों को बनाए रखें कि आत्मा ईश्वर है और इसलिए ये बीमार नहीं हो सकती। जिसे सामग्री कहा जाता है उसे बीमारी नहीं कहा जा सकता। आध्यात्मिक कार्य के माध्यम से कार्य करने का सारा कारण मन है। फिर सत्य और प्रेम की आंखें समझ के साथ अपनी ज़मीन थामे तो आप जीतेंगे। जब आप अपनी दलील के खिलाफ गवाह को चुप करवाते हैं तो आप सबूत को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि बीमारी गायब हो जाती है। जब हम दिव्य के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से समझते हैं तो हमारे पास कोई अनय मन नहीं हो सकता, लेकिन उनका कोई अनय प्रेम, ज्ञान या सत्य जीवन का कोई अनय अर्थ नहीं है और पदार्थ या त्रुटि के अस्तित्व की कोई चेतना नहीं है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।